ناظرین، لوہا پگھلانے والے مزدوروں کی زندگی ریکارڈ کرنے کے لیے پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ پہنچے۔ ہم منڈی واربٹن سے مسلسل سفر کرتے آ رہے تھے اور رات تقریباً 10 بجے مدنی مرکز فیضان مدینہ شیخو پورا موڑ گوجرانوالہ پہنچ کر آرام کیا اور الصبح فجر کی نماز ادا کر کے ہم اسٹیل مل پہنچے، جہاں لوہے کو پگھلا کر سریا تیار کیا جاتا تھا۔ سردی کے دن تھے، دھوپ اور موسم اچھا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کام کی شدت اور لوہے کی حدت کا خیال بھی ذہن میں آ رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہماری گاڑی اسٹیل مل میں داخل ہوئی، بھٹی کی آواز بھی آ رہی تھی جو جہنم کی چنگھار کی طرف توجہ موصول کروا رہی تھی۔ فیکٹری میں پہلے سے موجود عاشقان رسول نے استقبال کیا اور ان سے سرسری طور پر فیکٹری میں ہونے والے کام کے مراحل پر بات چیت بھی ہوئی۔
گوجرانوالہ پاکستان کا ایک بڑا پیارا اور مشہور شہر ہے اور انڈسٹریل ایریا بھی ہے یہاں پہ اللہ کی رحمت سے، اور یہاں پر لوہے کا کام بھی ہوتا ہے، لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، اس کو مختلف شیپس کے اندر اس کو ڈھالا جاتا ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم یہاں پر جو ہے وہ گوجرانوالہ میں آئے ہیں اور لوہا پگھلانے والے مزدور کی زندگی اور اس کے کام کاج کی کیا تفصیل ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔
زندگی زندگی زندگی
جو ہے یہ زمین سے نکلتا ہے، خام لوہا اسے کہا جاتا ہے، پھر وہ مختلف پروسیس سے گزرتا ہوا جو ہے وہ خالص لوہے میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا پروسیس ہے۔ بہرحال جو خالص لوہا ہوتا ہے اس کو پگھلا کر پھر اس کو ڈھالا جاتا ہے اور مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ آج ہم یہاں پر ایک لوہے کی فیکٹری میں موجود ہیں جہاں پر سریا بھی بنتا ہے، لوہا پروسیس بھی ہوتا ہے، تو یہاں چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے
الحمدللہ۔
یہ بتائیے جی، کیا لوہا پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ؟
یہاں پہ لوہا پگھلتا ہے اور سریا بنتا ہے اور سی سی چلتا ہے۔
ٹھیک ہے، مختلف سائز کا سریا جو ہے یہ بنتا ہے، ایسی بات ہے؟
ہاں جی۔ یہ
کتنے ایم ایم کا ہوتا ہے؟ تو سب سے کم
40 کا بھی ہوتا ہے، 60 کا بھی ہوتا ہے،
اچھا
45 کا بھی ہوتا ہے،
جیسے سب سے بڑا کتنے کا ہوتا ہے؟
وہ 60 کا ہوتا ہے۔
یہ آواز کس چیز کی آ رہی ہے؟
یہ بھٹی کی آواز ہے۔
بھٹی کی آواز ہے؟
ہاں جی۔
جس طرح یہ بھٹی کی آواز آ رہی ہے اور یہ کانوں کو لگ رہی ہے، جہنم کی بھی ایک چنگھاڑ ہوگی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ کیا آیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں؟ اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟
یہ ٹمپریچر ہے، جو لوہا پگھلتا ہے نا، یہ اس کا ٹمپریچر شو کرتا ہے۔ 1720-1700 پہ جا کے لوہا فل لیکوڈ فارم میں ہو جاتا ہے نا، یہ اس کا ٹمپریچر لے کے پھر آگے لے جاتے ہیں سریے کے لیے، سریا بنانے کے لیے۔
یہ لوہے کی بھٹی ہے اور اسے فرنس کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ والی بند ہے؟
ہاں ایک بند ہوتی ہے۔
اچھا اس کے زیادہ قریب نہیں جا سکتے نا، تو ہم تھوڑا دور دور ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بہرحال یہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، یہ پورا اس کا آگے پینل ہے۔ یہ ابھی کیا کریں گے اس کو؟
اس کا سیمپل کرنا ہے۔
سیمپل کیسے؟ مطلب اس میں کیا چیک کرتے ہیں آپ؟
اس کا وہ چیک کرتے ہیں، اس کے اندر لچک چیک کرتے ہیں کتنی ہے، اس کے اندر میگنیز چیک کرتے ہیں، اس کے اندر طاقت چیک کرتے ہیں کتنی ہے۔
تو کیسے چیک ہوتی ہے
یہ؟ اندر سیمپل ابھی کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔
کاٹتے بھی ہیں اس کو؟
ہاں جی۔
آپ کا نام کیا ہے؟
بدر زمان۔
تو آپ یہاں لوہا جو ہے چیک کرتے ہیں؟
ہاں جی۔
انسپیکٹر ہیں آپ یہاں پر؟
ہاں جی۔
ماشاء اللہ۔ اچھا اس کو چیک کیسے کرتے ہیں؟
انسپیکٹر لگا ہوا ہے، اسے چیک کریں گے مشین سے۔
ये वो है जिसके अंदर लोहे का सैंपल लेते हैं ना, क्या कहते हैं,
सैंपल डाई।
चले जी, इसमें वो लोहा जिस तरह हम शरबत जो है ना वो जग में से ग्लास में डालते हैं ना, वैसे आपने देखा है कि लोहा जो है वो पिघला हुआ वो इसमें डाला है। भट्टी बता रही है कि मैं भी हूँ, अल्लाह जहन्नम की आग से बचाए।
लोहे की भट्टी में लोहा डाला जा रहा था जो कि इंतहाई महारत के साथ साथ खतरनाक काम भी था। इन रिस्के हलाल कमाने वाले इन अजीम मेहनत कशों की इज्जत दिल में बढ़ती चली जा रही थी और दिल उनके लिए खैर बरकत की दुआएं भी कर रहा था। लोहा पिघलाने के लिए हमें भट्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है जबकि नरम करने के लिए लोहे को गर्म करना पड़ता है, मगर जनाब दाऊद अलैहि सलाम का मुजजा था कि लोहा उनके हाथ में मोम हो जाता था और वो जैसे चाहते थे उसको मोड़ लेते थे या उससे अपनी मतलूबा चीज बना लिया करते थे। लोहे को पिघलाने के लिए भट्टी मुख्तलिफ तरीकों से चलाई जाती है, कहीं फर्दस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं बिजली के जरिए लोहे को पिघला लिया जाता है। यहाँ बिजली के जरिए काम जारी था, मुख्तलिफ किस्म की चीजें मगर वही जो लोहे की ही थी भट्टी में डाली जा रही थी और भट्टी उनको मेल्ट कर रही थी।
वैसे कभी कोई बंदा इसमें गिरा भी है मजदूर भट्टी में?
इधर तो नहीं गिरा, वैसे गिरे हैं और जगह पे हमने वीडियो देख लिया, गिर जाते हैं।
कैसे गिर जाते हैं?
वो रेडी लगाते लगाते गिर भी जाते हैं।
अल्लाह,
इधर नहीं वैसे हुआ ऐसा कि गुजरात वाला। हाँ
जी, शुक्र है अल्लाह,
वो बहुत कम हुआ ऐसा,
लेकिन चांस मौजूद है।
चांस तो है ना।
अल्लाह अकबर। और बस भी जो गया तो उसका तो मेरा ख्याल है चांस नहीं है बचने का फिर कुछ भी।
नहीं नहीं, वो कहाँ बचे, वो तो नहीं।
अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हम इतनी दूर खड़े हैं उस भट्टी से, लेकिन ये भट्टी बता रही है कि आप लोग यहाँ मेरे पास खड़े हैं, जरा दूर दूर रहिएगा।
जिस तरह भट्टी लोहे के मैल को साफ कर देती है, वैसे ही जिक्रुल्लाह और तिलावत कुरान इंसान के दिल को गंदगी से पाक कर देते हैं। लिहाजा हमेशा अल्लाह का जिक्र भी कीजिए और तिलावत कुरान भी फरमाइए। इसी दौरान हमने देखा कि मेल्ट लोहे को शिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा लोहे का लीडल लाया जा रहा था। लोहा तैयार होने के करीब था कि इसका लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए इसे एक सांचे में डाला गया। हम लेबोरेटरी में पहुंचे।
अभी कहां गया ये?
अभी ये लेबोरेटरी में।
लेबोरेटरी कहां?
लेबोरेटरी,
यानी ये असल जो टेस्टिंग मशीन है वो ये है। ये क्या क्या बताती
है? ये कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज, फॉस्फोरस यानी कि सल्फर, ये सब कुछ बताती है इसके अंदर जो जो कमी है।
जो खालिस लोहा होता है वो हमने सुना है कि वो ज्यादा ठोस मजबूत नहीं होता, क्या ये बात दुरुस्त है?
नहीं, वो नरम होता है।
खालिस लोहा थोड़ा नरम होता है।
वो नरम होता है,
ठीक है, उसको कूटना उसको आसान होता है।
हाँ जी, उससे आसान होता है।
अच्छा, सरिया जो बनाते हैं तो उसमें लोहे में कुछ चीजें ऐड करते हैं उसके अंदर?
हाँ जी, ऐड होती हैं, यानी कि ये स्क्रैप जो पड़ा हुआ है बाहर वो ऐड करते हैं और यहाँ बाहर मसाला पड़ा हुआ है वो ऐड करेंगे, वो बन के जाएगा फिर आगे,
फिर सरिया दूसरा प्रोसेस बनने का।
वो प्रोसेस
आगे। अच्छा, ये भट्टी क्या कर रही है? ये लोहे को खालिस कर रही है?
नहीं, ये पिघला रही है यानी कि मेल्ट कर रही है।
ठीक है,
ठीक है, उसके अंदर तीन चार जो भी स्क्रैप हमारे पास पड़ा है वो मेल्ट करके उसे मिक्स करके उसके अंदर फिर आगे जाएगा, यानी कि मैग्नीज जलेगा आगे जाएगा, फिर वो सरिया बनेगा।
ठीक है।
हाँ जी,
यानी यहाँ पर लोहा पिघला कर उसको एक खास शेप दी जा रही है,
खास शेप,
और फिर इसके बाद ये आगे जाके फिर ये सरिया बनेगा।
ये सरिया बनेगा,
ठीक हो गया।
लेबोरेटरी के मुआयने के बाद वापस बाहर आ गए। वक्तन फवक्तन भट्टी का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा था और लोहे को मैल से साफ करने का प्रोसेस भी किया जा रहा था। एक किस्म का पत्थर वहाँ रखा हुआ था, उसके बारे में मालूमात हासिल की।
ये क्या है?
ये मैग्नीज है।
ये क्या काम करती है?
ये अंदर ताकत बढ़ाने के लिए काम आती है,
लोहे की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए।
हाँ जी, ताकत बढ़ा।
ठीक हो गया
जी।
नाम क्या आपका?
वहीद।
वहीद भाई, आपकी क्या मसूफियत है यहाँ पर जी?
मैं ऑपरेटर हूँ।
फर्नेस ऑपरेटर हैं आप? माशाल्लाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी है इस शोबे के आप, माशाल्लाह। इसमें किस किस तरह का लोहा इस्तेमाल किया जा सकता है, किस किस फॉर्म में?
ये लोहा हर किस्म का ही आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि हमने देखना होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जो जो लोहा चलेगा ना हम वो लगवा देंगे। यानी कि इधर तीन चार पाँच छः किस्म का आ जाता है
लोहा।
देग भी आती है, हल्का लोहा यानी कि जैसे ये बंडल पड़े हुए हैं वो भी आता है, उसके बाद वो टापा वगैरह भी आता है, स्क्रैप वगैरह भी आता है, निगर स्क्रैप भी होता है जी, मोटरें भी आती हैं, वो उनको तोड़ के अंदर लगा देते हैं, यानी कि उसे काट के ना गैस बत्ती से काट के वो लगे जाती हैं, पिघल के आगे चली जाती हैं।
कराची से कभी शिप का लोहा आया हो?
हाँ आता रहा है, आता रहा है।
शिप ब्रेक होते तो उसका भी जो लोहा होता है वो फिर मेल्ट होकर के सरिया बनाने में काम आता है। अच्छा ये बताएं कि लोहा मेल्ट होकर सरिया बनना या खालिस लोहे का सरिया बनना, इसमें कोई फर्क है?
हाँ जी फर्क है इसके अंदर,
ये देखें जी टेम्परेचर देखें।
जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाप हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाप हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम ये, या रब जगा भी रहे हो करम ये, तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी। जिंदगी 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 जिंदगी।
ये तो लोहे की चादर के पीस लग रहे हैं मुझे।
जी लोहे की चादर के पीस है ये,
मुझे
जो
थोड़ा शगफ है ना,
ये जो चीजें वो बनती है ना बाहर, जो उनकी डाई में से वेस्टेज निकलती है वो इधर स्क्रैप में आ जाती है।
ऐसी बात, मैं सोच रहा था कि कपड़े और हाथ बचाएंगे लेकिन हाथ भी काले हो रहे हैं, कपड़े तो अभी तक ठीक ही है। और भाई आप कैसे?
मैं जी शुक्र अल्लाह का।
क्या नाम है आपका?
मोहम्मद अंसर।
मोहम्मद अंसर भाई कब से काम कर रहे हैं आप ये?
मुझे तकरीबन 20 साल हो गए।
20 साल हो गए यही काम करते हो?
यही करते हैं।
माशाल्लाह, इस भट्टी में क्या क्या डाला जा सकता है?
लोहा ही डाला जा सकता है।
लोहा ही डाला जा सकता है, किस भी फॉर्म का लोहा वो डाल सकते हैं
जी।
सही है, तो आपने ये फील्ड क्यों ली हुई है? आप कोई और आसान काम करने का दिल नहीं करता आपको?
बस करता है, बस जो सा सीख लिया वो ही करेंगे ना,
जो सीखेंगे वही करेंगे।
हाँ जी
माशाल्लाह। अच्छा लोहे की कौन कौन सी फॉर्म है वो जो इसमें डलती है, मतलब किस किस तरह का लोहा डलता है? लोहा भी बड़े किस्म का होता है ना, देगी लोहा होता है, दूसरा लोहा होता है, नहीं कौन सा डलता है?
देगी जो इंसान था ना उनकी अपनी किस्म होती है ना, भाई स्पेयर पार्ट के लिए जो है ना उसके लिए डाला जाता है।
सही है
जी, जो इंसान सरिये के लिए ना वो लोहा ही डाला जाता है,
देगी लोहा नहीं डलता?
नहीं
देगी लोहा कहाँ डलता है?
देगी लोहा इसमें डलता है रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
अच्छा,
जितनी जरूरत होती है उतना डालते हैं, बाकी नहीं डालते।
तो एक वक्त में कितना लोहा प्रोसेस हो जाता है इसमें?
7 टन
जी।
7 टन
7 टन लोहा ये भट्टी एक वक्त में पिघला देती है। अच्छा फिर इसमें से उसको निकालते कैसे?
ये जग लगे हुए अभी थोड़ी देर में आपको देख लेना, भर गई है भट्टी, ये उसमें गलती हो जाएगी।
तैयार हो गई अभी?
ये तैयार हो गई है अभी, 15-20 मिनट लगेंगे
अभी, और 15-20 मिनट लगेंगे।
15-20 मिनट
तो पत्थर वत्थर का भी डालते हैं इसके अंदर?
वो डालते हैं ना रिक्वायरमेंट
नीड के मुताबिक करते हो। ये देखिए यहाँ मैं आपको अर्ज करूँ कि ये भट्टी ये बिजली से जो है ना वो प्रोसेस हो रही है, चल रही है, और इसका टेम्परेचर इस वक्त जो है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप देखें लोहा इसमें कैसे पिघल रहा है और उबल रहा है, जिस तरह हंडिया में पानी उबलता है ना, पानी का जो नुकता है खुलाव है, यानी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा गोल्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1000 सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरह लोहे का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड इसके करीब करीब ही है, ठीक है। तो अब आप जरा देखें लोहा कैसे इसके अंदर जो है ना वो उबल रहा है, और ये आग जल रही है, और ये फ्यूल के बगैर जल रही है। फ्यूल यानी इसके अंदर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा या कोई और ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये इसके अंदर बिजली के जरिए से इसको जो है वो चलाया जा रहा है। और आप जरा सूरत हाल देखिए क्या है,
ये टेम्परेचर आज इसके अंदर अभी डिप करेंगे और पीछे टेम्परेचर आ जाएगा, जितना टेम्परेचर लोहे का है वो आ जाएगा। लोहा जो है ना 800-900 पे तकरीबन जो है सुरख होना शुरू हो जाता है, और 1200 पे लिक्विड होना शुरू हो जाता है, 1600-1700 पे फुल टेम्परेचर पे आ जाता
है, बॉइलिंग पॉइंट पे,
बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है।
तो इसको बॉइलिंग पॉइंट पे क्यों लेके आते
हैं? बॉइलिंग पॉइंट पे इसलिए लेके आते हैं कि इसके जो आगे बिल्ट बनना होता है ना, तो वो फिर बिलट उसका बन जाता है आसानी के साथ।
सही हो गया,
आसानी के साथ बिलट बन जाता है। बिलट का जो टेम्परेचर होता है वो 1100 होता है,
उससे आगे फिर जाके सरिये की हालत में वो रूलिंग हो जाता है, रूलिंग होके सरिया बन जाता है, क्योंकि टेम्परेचर आगे जो है ना वो 900,000 होना चाहिए जब इसको सरिये के लिए लेके जाना बनाने के लिए। बिलट बनने में थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 400-500 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है।
मतलूबा दर्जा हरारत और वक्त गुजर जाने के बाद लोहे को भट्टी से आगे शिफ्ट करने का प्रोसेस शुरू किया गया। पहले लोहे में मौजूद वेस्ट को यानी मैल को निकाला गया, भट्टी से लोहे को ट्रांसफर किया गया, फिर उसका टेम्परेचर चेक किया गया।
अच्छा ये बताएं, जो अभी इसमें से भट्टी में से निकाला है ये क्या है?
वो मैल है, वो वेस्ट है जी, वो किसी काम की नहीं है, वो वैसे ही ये जैसे ये देखे ना ये पड़ा हुआ है, ऐसे आएगी दोबारा,
यानी वो जो मेल्ट वेस्टेज है वो इस फॉर्म में आ जाएगा,
ये फॉर्म में आएगा ना, वो फिर भट्टी में लगेगा, वो फिर आगे लोहा बांध के आगे जाएगा, यानी कि सरिया बांध जाएगा फिर इसका।
ये फेंकने के काम आएगा?
नहीं, ये इसमें जाएगा, वेस्ट जोन है ना, ये भट्टी में फिर लगाएंगे, ये फिर मेल्ट होगा, फिर आगे जाएगा सरिया बनने के लिए।
ठीक हो गया।
हाँ जी,
ये जो ज्यादा भड़क रहा है ये मैग्नीज ही भड़क रहा है ना?
हाँ जी, वो है ना? होता है कि ऐसे इसलिए फेंक दिया कि जरा मिक्सअप आसानी से है।
ये लोहा जो भड़क रहा है ये मैग्नीज की वजह से भड़क रहा है।
अगले प्रोसेस के लिए हाइड्रोलिक के जरिए सफर शुरू हुआ।
जिंदगी जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी।
अच्छा अभी ये कहाँ जा रहा है?
ये नीचे जाएगा, अभी नीचे बन के जाएगा, बेल्ट बनेगा इतना, वो नीचे
नीचे कहाँ जाके डलेगा?
ये जाएगा मिल के ऊपर, मिल में जाएगा, मिल में सरिया बनेगा।
ये मिल कहाँ है सरिया वाली?
ये आगे है।
अच्छा, अभी गिल्ड बनता जा रहा है?
हाँ जी, ये घूमता है, ये नीचे लेकर जाता है आप। हाँ ये देखो ना, ऐसे ऐसे कर। हाँ जी, इसमें जाता नहीं,
ये देखे, ये देखें, ये वो लोहा है जो भट्टी से पिघलने के बाद अभी इस फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, ये गैस कटर है यहाँ पर, तो जहाँ इसको गिल्ड को काटना होगा तो वहाँ इसे गैस कटर से काट देंगे, ऐसी बात है जी?
हाँ जी।
ये देखिए अभी इसको काट रहे हैं।
इसका टेम्परेचर 1100 है अभी इस वक्त,
पिघला हुआ लोहा एक सांचे में डाला जा रहा था। इसी दौरान चिंगारियां भी उड़ रही थीं, जो माहौल को हैबतनाक बना रही थीं। अल्लाह पाक दुनिया की आग से भी बचाए और आखिरत की आग से भी महफूज फरमाए। पिघला हुआ लोहा बिल्ट में तब्दील होता जा रहा था। लोहे की बिल्ट को मतलूबा मिकदार में वहाँ पर मौजूद एक खास किस्म की कैंची से काट दिया जाता है और फिर वो अगले प्रोसेस की जानिब बढ़ता चला जाता है।
लोहा जो है ये मेल्ट होने के बाद, इसका बेल्ट बनने के बाद, अभी आप देख रहे हैं कि ये सरिया बन रहा है। बहुत बड़ी मोटर है कि इसके साथ व्हील है और ये पूरा सिस्टम चल रहा है और ये अब आगे सरिये की फॉर्म में जो है ये ढलता जा रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि अभी भी इसका दर्जा हरारत अप्रॉक्स जो है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब है अभी भी।
बिल्ट को लोहे के सरिये की शक्ल देना बड़ी महारत का काम है और इसी तरह खतरनाक काम भी है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। याद रखिए कि बाज़ औक़ात इंसान को जिंदगी में एक ही मौका ऐसा मिलता है कि वो उसमें कोई गलत काम कर लेता है और फिर बाकी सारी जिंदगी पछताता रहता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने आप को गलतियों से बचाने की कोशिश करे। एक ढलाई मुकम्मल होने में तकरीबन 35 मिनट लगते हैं और फिर मजदूरों के पास अगली ढलाई के इंतजार तक रेस्ट टाइम होता है। हमने कुछ मजदूरों से बातचीत की, क्या गुफ्तगू हुई आइए सुनिए।
अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये किसी आपको मशीन नजर आ रही है, खराब मशीन है। खराब मशीन पर काम करने वाले कारीगर को खराबिया कहते हैं और खराबिया इतना जहीन और इतना हुनरमंद आदमी होता है कि आप सोच नहीं सकते। आए जरा थोड़ा बात करते हैं। ये यहाँ फोरमैन है, इसको खराद मशीन कहते हैं। खराद मशीन ऐसी ज़बरदस्त मशीन है कि जिस बंदे को खराद मशीन का काम आता हो उसकी इंडस्ट्री फील्ड के अंदर चांदी है। वो कौन सी शय है, वो कौन सी डाई है, वो कौन सा काम है कि जो आप खराद मशीन के जरिए नहीं कर सकते। यानी इस एक मशीन के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर मैं पूरा 45 मिनट का प्रोग्राम इस पर कर दूं तो हो जाएगा।
कोई भी ऐसा काम नहीं जो इस पर नहीं हो सकता
इंडस्ट्री फील्ड के हवाले से।
जी, पूरे इंजीनियरिंग का काम खराब ही नहीं कर सकती है।
क्या बात है, ये भाईजान की बात आपने सुनी। पूरी इंजीनियरिंग का काम कौन कर रहा है, खराब मशीन कर रही है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे हैं इससे?
अभी ये चापट बना रहे हैं।
क्या बना रहे हैं?
ये रोल के चापट है।
यानी ये जो सरिया गुजर के आ रहा है तो वो जिस सांचे में से गुजर के आ रहा है, जिस शाफ्ट में से गुजर के आ रहा है वो बन रही है, ऐसी बात है।
ये मेल के रोल के मेल की क्या बड़ा है।
ठीक है,
हाँ जी।
अच्छा ये बताएं आप यहाँ पर और क्या क्या बनाते हैं इसे खराब मशीन से?
खराब मशीन पे हर चीज़ बनती है, ये रूलिंग मिल के रूल बनते हैं सारे, सब कुछ तैयार होता है इधर ही, और भी को अंधारा हो जाता है इधर।
ठीक
जी।
अच्छा वहाँ क्या, इस पर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है?
उधर वो रूल बन रहा है इसका, इधर ये शाफ्ट बन रही है, इधर भी शाफ्ट को ग्रुप निकाल रहे हैं।
अच्छा एक शाफ्ट बता रहे होती है और एक रूल होता है, यानी सरिया जिसमें से गुजर कर आता है ना, साइजिंग सरिये की साइजिंग जो होती है वो उस रूल में से होती है, ऐसी बात है।
रूलों में से ही होती है, जो रूल बनते हैं उन रूलों में से सब सरिया नहीं होता।
और शाफ्ट ये समझ लें कि सरिये को आगे गुजारने के लिए जो काम आती है वही।
हाँ जी जी, ये रूल के अंदर शाफ्ट लगती है ना,
शाफ्ट रूल के अंदर लगती है,
अंदर लगती है और इसके अंदर रूल लगती है ना, जो शाफ्ट इसके ऊपर गोट लगती है, गोट वो रूल बनता है, रूल के अंदर से सरिया निकलता है।
अच्छा तो इसका साइज क्या होता
है? इसका साइज होता है कुछ 6.5 इंच, कुछ 7 इंच भी होती है, तो कुछ 7.5 इंच भी होती है, ये दो तीन साइज होते हैं।
ठीक हो गया,
हर मिल का अपना अपना साइज होता है।
सही है
जी।
यहाँ क्या साइज सरिया बनता है?
ये सरिया तो 3 सूत्र का भी बनता है, 80 का भी बनता है, 1.25 का भी बनता है और 1 इंची का भी बनता है। ठीक है, और इसमें जो है ना रूल, ये मिल है 10.5 इंच की, और छोटी मिलें भी होती हैं, बड़ी मिलें भी होती हैं। इसका रफ स्टैंड जो है वो 18.5 इंच का है, उसमें से वो 4 इंच का बेल्ट जो है रफ होता है और आगे आगे सरिया तैयार होगा।
जेड़ा रूल खराब हो जाए वो भट्ठी से पारो दोबारा इंजी गल है
जी, जो टूट जाता है वो भट्ठी में जाता है।
जो टूट जाता है वो दोबारा कहाँ जाता है? भट्ठी में जाता है। अच्छा ये तो खराब मशीन है और ये सामने इसे कहते हैं शेपर, इंजी गल है जी?
हाँ जी, वो शेपर मशीन लगी हुई है।
शेपर मशीन एक ही काम करती है, दसो जी?
उसके ऊपर भी जो सा मर्जी काम हो वो शेपर हो जाता है, मतलब अपना जो खराद नहीं कर सकता वो शेपर मशीन करती है।
ठीक हो गया
जी।
यानी वो काम जो खराद मशीन पर नहीं हो सकता वो शेपर मशीन कर देती है।
बड़ा नाम जी? लियाकत अली जी।
लियाकत भाई, कितना सोनी अठड़ वर्गी हो
माशाल्लाह जी,
अल्लाह बरकत दे। कितना टाइम हो गया तुम काम करते?
कानून सारे से 2.5 साल हो गए।
2.5 साल हो गए फिर फोर में?
हाँ जी।
आप आए आप कुछ बात दिखा, करीब से मशीन दिखाते हैं, आ जाए अभी तो दिखा सकते हैं। ये जब काम चल रहा हो ना तो उस वक्त इसके करीब नहीं आ सकते। ठीक है, आओ जरा तो तशरीफ ले आओ, आ जाओ वहाँ। ये देखें, ये जो है ना इसकी साइजिंग है इसकी, ये आप देख रहे हैं, ये एक रूल ऊपर चल रहा है, एक रूल जो है वो नीचे चल रहा है। अच्छा इसका साइज जो है ना, ये देखें इधर से, यहाँ से इसकी सेटिंग करते हैं। हाथ लिबड़े जान के काम करिए तो लिबड़े तो जानते हैं हाथ, ये लिबड़े हाथ जो है ना अल्लाह बड़े पसंद ने, मेहनत करके खा रहे हो, कमाई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जिसके हलाल कमा रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, फ्रॉड नहीं कर रहे, धोखा नहीं कर रहे, तो बड़े कमाल बंदे हो माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। दुआ जी कबूल होती है ना जी, जेड़ा रोटी हलाल खाए, जिसके हलाल कमाए तो हलाल खाए, अल्लाह जी सुनता है, तो कमाल कर रहे हो माशाल्लाह। ये देखें एक एक तरफ ये है और ऐसा ही दूसरी तरफ भी है, ये दो आपको नजर आ रहे हैं, इनसे इसकी जो है ना साइज सेट होता है। दोनों में से किसी एक में भी एक सूत्र भी फर्क आएगा ना, एक सूत्र तो हमारी आम जो है वो फैक्ट्री जबान में कहते हैं, मैं इसको अगर जो है इंजीनियरिंग की जबान में अगर आप बोले तो इसको मिलीमीटर कह सकते हैं आप। ठीक है, एक मिलीमीटर भी है, वो भी अगर फर्क आएगा तो जो सरिया सामने वाले को रिक्वायर है उसका साइज क्या हो जाएगा, कल्पट हो जाएगा। तो ये बड़ी जहानत का और बड़ी महारत का काम है। इनके घर में सही अर्ज कर रहे हैं, ठीक ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਸਰੀਆ ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ,
ਸਰੀਆ ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੋ ਜੋ ਸਿੱਖਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ,
ਹਾਂਜੀ,
ਜਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇ ਫਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਹਾਂ ਸਮਝ ਲੇ ਮਸਲਾ ਕਿਆ ਹੈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਬ ਇਸਕੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ, ਜੈਸੇ ਬੀਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਨ ਮੇ ਵੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਆ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਕੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਕੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬੀਵੀ ਕੇ ਹਕੂਕ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਬੀਵੀ ਕੇ ਹਕੂਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਾਂ ਕੇ ਹਕੂਕ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਦੋਨੋ ਮੇ ਸੇ ਕਹੀਂ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਕਰੇਗਾ ਤੋ ਬੰਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਰਕੇ ਮੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਹਕੂਕ ਕਾ ਕਿਆ ਰੱਖਾ ਜਾਏ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ 24-24 ਘੰਟੇ ਚ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋਗਾ ਵਹਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੈਰੁਲ ਉਮੂਰੀ ਔਸਤੁਹਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਰੀਕੇ ਪਰ ਹੋ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋ, ਯੂ ਸਮਝਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਇਸਕੋ। ਤੋ ਯੇ ਕਿਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨੋ ਮੇ ਸੋਕਰ ਆਤਾ ਲੋਹਾ?
ਯੇ ਸਾਤ ਮਸ਼ੀਨੋ ਸੇ, ਸਾਤ ਇੱਕ ਵੋ ਛੇ ਯੇ ਹੈ, ਛੇ ਮਸ਼ੀਨੋ ਸਾਥ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਬਤਾਊਂ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹਮਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਵੋ ਗੁੱਸਾ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੂੰ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਧਰ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਬ ਯਹਾਂ ਕਾਮ ਹੋ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਯੇ ਲੋਹਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਯੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਇਸਕਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੋਤਾ
ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਹਮ ਲੋਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਤੋ ਇਸਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਯੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਲੋਹਾ ਜਬ ਉਸਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇ ਲਗਾ ਦਿਆ ਨਾ, ਅਬ ਉਹ ਆਗੇ ਜਾਣੇ ਮੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਹੇ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਚ ਮੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸਕੀ ਜ਼ਦ ਮੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੇ ਕਰਨਾ ਥਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹਮੇ ਵਾਰਨ ਕੀਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਕਰੀਬ ਨਾ ਆਏ, ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਪਾਉਂ ਜਲ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਮਾਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਗੇ ਗਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਇਹਨੋਨੇ ਹਮੇ ਜਲਾਲ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਦੇਖ ਕਰ ਦੇਖਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਯੇ ਵੀ ਕਹਾ ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਪੀਛੇ ਰਹੋ। ਤੋ ਯੇ ਇਨਕਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਥਾ, ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਥਾ, ਭਾਈ ਅਗਰ ਯੇ ਨਹੀਂ ਇਸਕੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਭੀ ਵੀ ਆਪਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਬਹਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਕਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਕਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਯਾਰ ਯੇ ਜੋ ਇਸਕੀ ਬੇਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਯੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਬੇਟੀ ਪਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਮੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ। ਜੈਸੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਮਾਰੀ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਬਿਹਤਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਥੇ, ਇਧਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਯੇ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੋਹੇ ਕਿ ਸਰੀਏ ਕੀ ਜ਼ਦ ਮੇ ਆਏਗਾ ਤੋ ਪਾਉਂ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਭੀ ਹਮਾਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਗੇ ਕਾ ਜਦਵਲ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਕੋ ਸਮਝਾ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਪ ਕਾ ਡਾਂਟ ਵੀ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਬੱਚੀ ਬਾਪ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਬੱਚਾ ਬਾਪ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਗੇ ਹੱਥ ਮਿਲਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਬਾਤ, ਆਪਕੀ ਜੋ ਖੈਰ ਖਾਂ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਜੋ ਭਲਾਈ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਕਾਨੋਂ ਸੇ ਵੀ ਸੁਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਸੇ ਵੀ ਸੁਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਸਕੋ ਮਾਨੇ ਵੀ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਨਾ ਲੱਗਦਾ,
ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ,
ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਪਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਕਿਧਰ ਗਏ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਜਨਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਧੀ ਕੋ ਹੈ ਚੱਲੇ, ਅੱਧੀ ਹੈ ਚੱਲੇ, ਹਾਲ ਜਜ਼ਾ ਉਲਿਸਤਾਨ ਇਲਾ ਲਿਸਤਾਨ, ਨੇਕੀ ਕਾ ਬਦਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਉਸਕਾ ਖਿਆਲ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਏ,
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹਦੀ
ਝੜੀ ਨਿਆ ਲਗਾਏਗਾ ਵੀ,
ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ
ਯੇ ਬਾਲ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੇ ਅਭੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਬਾਲ ਮੇ,
ਯਾਨੀ ਹਮੇ ਵੇਖ ਰਹਾ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਓਵਰ ਆ ਰਹਾ ਥਾ, ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇ,
यानी ये निकल जाएगा, नया इसमें लग जाएगा।
हाँ, नया
कौन सा लगेगा? नया
नया बाल यही होगा, चलिए इसका नहीं लगा देंगे।
चलिए नहीं लगाएंगे।
अच्छा जी,
तो कैसे लगाएंगे?
अभी इसका पैटर्न करेंगे,
बस देखें जी सेटिंग हो रही है अभी।
ये लड़के सेटिंग कर रहे हैं
माशाल्लाह।
इन्हां दी 8 तो 8 ड्यूटी है
जी।
सुबह 8 बजे जाना है, रात नु 8 बजे जाना है। रात नु 8 बजे लगेंगे, सुबह 8 बजे हटेंगे।
रोटी एक बारी खाएंगे?
नहीं नहीं, तीन बारी रोटी खाएंगे।
तीन बारी खाएंगे?
हां जी
माशाल्लाह।
रोटी तीन बारी खाएंगे तो अपना राज के खाएंगे, कुछ भी नहीं होता।
अच्छा जी। अच्छा सरिया असा वेख्या प्लेन भी होता है ते नाल जड़ा ना वो झरी वाला भी होता
है। ए झरी वाला बाने दा डफारा मेनू कहंदे।
अच्छा जी। ना तामीरात इस्तेमाल होता है?
हां जी, जिवें मालक ऑर्डर देणगे उंजे ते बन जावे।
जो इसके ऊपर वो जो झरी लगती है ना, वो सबसे एंड 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 पे लगती है।
हां जी, वो इधर
वो उसको लगती है। ये देखें इन दोनों फर्क है। यहाँ से प्लेन सरिया आएगा, ये देखें
टाक सिर्फ होते बैठेंगे।
यहाँ से प्लेन सरिया आएगा और घड़ी जो बनेगी वो वहाँ पर बनेगी। दोनों की डाई मुख्तलिफ है ना। अच्छा ये दसो, ये बताइए वो इतना हैवी व्हील वहाँ क्यों लगा हुआ?
यार वो व्हील लगेगा तो ये बेल आगे चलेगा,
यानी व्हील लगेगा तो लोहा आगे जो है ना
चलेगा। अगर व्हील नहीं चलेगा तो बेल नहीं चलेगा।
मोटर क्या करती है पहले?
मोटर का काम है
व्हील को घुमाना।
हाँ जी
बस, फिर यानी व्हील जब घूमता है तो फिर वो इसकी एक पावर बनती है।
मेरे का पावर बन जाता है
तो ये लोहा फिर आसानी से सर्कुलेट करता
है। मोटर पे लोड नहीं आएगा, या व्हील नहीं होगा तो ड्राइव मोटर पे बहुत लोड जाएगा
और इतना लोड मोटर उठा ले ये बहुत मुश्किल है। ऐसी बात कितना होता ना व्हील
इसका? मेरा ख्याल 15 टन।
15 टन बहुत। आपने बात सुनी वो जो लोहा फट जाता है ना, उसे क्या कर देते हैं? काट देते
हैं। इसको काट देते हैं, कैंची के साथ काट के लगाया जाता है।
काट देते जो बंदा जिसका मिजाज ऐसा हो ना, फटा हुआ मिजाज, हर बात में कीड़े निकालने हैं, उसको फिर लोग कटा देते हैं। दावतों में से कटा देते हैं, तकरीबात में से उसको कटा देते हैं, निकाल देते हैं। हमें हमें आएगा कोई ना रोड़ा ही पावेगा। ऐसे तो बात के रखो भाई, इंजे गाले
बिल्कुल बिल्कुल।
लोहा भी ठीक होना जरूरी है और बंदे का ठीक होना भी क्या है?
जरूरी है।
लोहा ठीक होना भी जरूरी है और बंदे का ठीक होना भी जरूरी है। मेरा जी चाह रहा मैं कुछ काम करूं लेकिन ये सख्त काम है ना। अच्छा मैंने लोहे के काम का कुछ हल्का सा तजुर्बा मुझे है, हल्का सा, ज्यादा नहीं हल्का सा है। बिलाल भाई आप दिखा, आपको हमने यहाँ पे आप काम कर रहे थे तो आपने इस फील्ड का इंतखाब क्यों किया?
वैसे ही शौक से।
शौक से किए? मुश्किल काम करने का शौक है आप? तालीम कितनी है आपकी?
तालीम 5।
फैमिली तक पढ़ा आपने? ठीक है। पढ़ने में दिल नहीं करता था आपको?
नहीं।
क्यों?
वैसे
वैसे अभी कैसा फील कर रहे हो आप?
अब अच्छा फील कर रहे हैं।
अच्छा फील कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कितने फंस गए हैं यार, केड़े काम लग गए?
वो होता है कभी कभी, बस करना पड़ता है। फिर
एज कितनी है आपकी?
18 साल।
18 साल आपको देख कामयाब करे, बड़ी महारत वाला काम है आपका।
तो
कभी ऐसे आप लोहा पकड़ते हैं कभी मिस भी होता है आपको?
वो निकल जाता है कभी कभी, होता है वो जब काम में थोड़ा गड़बड़ होती है ना, फिर वो होता है पीछे चला जाता है।
जब आगे चले तो फिर जो पीछे से आ रहा है उसको यहाँ से पकड़ेगी उधर
उधर लगा सकते हैं। हाँ उधर लगा सकते हैं।
ठीक हो
गया। और
ये भी बड़ा काम है माशाल्लाह, बरकत है। आप कामयाब करें, आप काम करने में भारत बंदे को आर महसूस नहीं करनी चाहिए। कोई काम याद रखे छोटा बड़ा नहीं होता, तो काम करें जिसकी हलाल कमाएं और अच्छे काम करें।
ऐसी
बात है।
हाँ जी।
आप आगे क्या प्लान है आपका जिंदगी में, आगे क्या करेंगे?
आगे कुछ नहीं, आगे कुछ बनाएंगे जब अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा। फिर ही
बनना है आपको।
हाँ जी।
हॉर्न किस चीज का बजा भी?
यहाँ आने की।
अभी हॉर्न बजा रहे? सायरन बजाई?
ये का आगे डलाई
अलर्ट कर रहे हैं यानी के। चले जी अलर्ट कर रहे हैं, अभी देखें मशीनें सारी अल्लाह की रहमत से ऑन हो जाएंगी।
हाँ जी
आप भी अलर्ट हो जाएंगे। क्या बात है आपकी माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैरा। ये सायरन बता रहा है कि माल अभी यहाँ पर आ रहा है। तो बंदे की जिंदगी में भी बाज़ क्या होता है कि इसे जो है वो सायरन बन के उसको वार्न कर रही होती है। जहाँ उसको वार्न किया जा रहा है तो वहां पर वो क्या हो जाए? वार्न हो जाए। जहाँ खबरदार किया जा रहा है वहां क्या हो जाए? खबरदार हो जाए। मुझे याद है हमारी जो कारखाना था उसकी जो भट्टी थी ना, उसको फर्नेस ऑयल से चलती थी वो, तो उसको जब फर्नेस ऑयल खोलते थे तो वो उसमें ऑयल जमा होता था तो उसमें आग लगती थी। जब उसमें बर्नर चलाते थे ना तो बर्नर चलाने से पहले एक आवाज थी, खबरदार, यूं कहते थे खबरदार भाई। वो फिर उसको हल्का सा बर्नर चलाते थे वो बहुत ज्यादा आग निकलती थी। तो फिर उसको दो मरतबा उसको करते थे, आहिस्ते आहिस्ते चलाते थे और फिर उसको स्पीड के साथ चलाते थे तो वो पूरा सिस्टम जो था वो एक रो में आ जाता था। दोबारा जब खबरदार किया जा रहा तो खबरदार हो जाना चाहिए।
जो हरम वायदा हो सुनो की
खबरदार हो जाओ,
तैयार हो जाओ, चला लो।
अच्छा रमजान शरीफ है ना, उसमें भी सायरन बजता है, तो उसमें भी जब सायरन बज जाए, अच्छा सायरन बजे तो ना बजे, टाइम अगर हो गया तो खाना पीना बंद करना होता है। अच्छा सायरन बज गया है तो बाल का दो मिनट पहले बज जाता है सायरन, तो तब भी रुक जाए आप, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आपने रुकने का मिजाज बनाए, पंजाब में कहते हैं भाई कुगू बोल गया। आपको भी मैंने देखा, आप भी इधर लोहा जो ना ये सरिया बनाने वाले में ये प्लेट भी होता है, यहाँ क्या करते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से आप दोबारा उसको आगे भेज देते हैं, अच्छा यहाँ आके फंस जाते
हैं,
फिर चला जाता
है। फैक्ट्री में मजदूरों की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी फैक्ट्री में शीरा मिट्टी देखने को मिली, ये क्या था आइए देखिए।
अच्छा भाई जान ये बताएं ये क्या हो रहा है यहाँ पे?
ये शीरा मिट्टी बनी हुई है।
शीरा मिट्टी बता रहे हैं, शीरा मिट्टी क्या होता है जी?
ये इसके अंदर टंडश में लगाएंगे।
नहीं शीरा मिट्टी होती क्या है?
ये मिट्टी है, इसमें गुड़ का शीरा डाला हुआ है।
गुड़ का शीरा इसमें क्यों डालते हैं?
मिट्टी को चमड़ करने के लिए।
यानी मिट्टी में क्या आ जाती है, स्टिकी हो जाती है
जी, चिकनाई हो जाएगी इसमें।
सही है, तो गुड़ के अलावा और क्या डालता है इसमें?
और कुछ नहीं डालता है इसमें।
यानी ये मिट्टी है और इसमें गुड़ है, ठीक है। गुड़ का शीरा, गुड़ का शीरा देखें जी, ये खाने वाले गुड़ का शीरा है
जी।
अच्छा
हाँ जी,
तो ये कैसे बनाते हैं?
ये शुगर मिल में बनता है।
यानी बना बनाया जाता है आपके पास
जी?
ऐसे ही
जी।
ये देखिए जी, इसमें मिट्टी डाल दी जा चुकी है, अभी इसमें शीरा मिक्स किया जा रहा है। अच्छा इसकी कोई मकदार डालनी होती?
नहीं मकदार कोई नहीं आती,
अंदाजे से डालते
अंदाजे।
दो तीन मिनट में रेडी हो जाएगी। अच्छा रेडी होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगी?
हाँ इधर ले आ जाएंगे।
अच्छा इसके बाद ये उसको यहाँ सेट करते हैं?
हाँ जी टनश में लगाएंगे।
ये बताएं कि ये अभी क्या हो रहा है?
ये सुखाई जा रही है मिट्टी, इसकी
मिट्टी सूख रही है, लोहा उधर से फिर इसके अंदर आएगा,
इसके अंदर आएगा
और यहाँ से फिर नीचे से नोजल बनी हुई है तो जाएगी, तो ये मिट्टी लोहे में मिक्स नहीं हो जाती?
नहीं मिट्टी नहीं मिक्स होती,
मिक्स नहीं होती
जी।
ठीक है, तो ये ऊपर कैसे जाता है?
क्रेन के जरिए जाता है।
क्रेन के जरिए से जाता
जी,
यानी और जो ऊपर लगा हुआ वो नीचे आ जाएगा
जी।
तो जो लोहा इसमें चिमट जाता है उसको क्या करते हैं?
बाहर निकाल देते हैं।
तो बाहर निकाल मतलब इस फॉर्म में आया था। अच्छा ये इस्तेमाल होने के बाद नीचे आ जाएगा और फिर ये देखिए इसको खोलते हैं, ऐसे खोलते हैं, ये ऊपर से जब आता है सांचा तो यूँ यहाँ उसको ठंडा कर लेते हैं पानी डाल के, और जो ये स्लश वगैरह जो भी होता है डंप कर दिया जाता है जी,
मलबे में जाता है, ये बर्ती वगैरह डालते हैं।
अच्छा बता रहा मलबे में इस्तेमाल हो जाती है ये मिट्टी वगैरह।
हम रिकॉर्डिंग मुकम्मल करके रवाना होने ही वाले थे कि एक भाई गुड़ की कुछ पेशियां शॉपर में डालकर हमारे पास आ गए।
क्या लेकर आया?
ये गुड़ है, ये गले के लिए और गर्भवार के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसलिए स्टील मिल में ज्यादा लोग यही खाते हैं।
सही, यानी गर्दों को बाल वगैरह उठ रहा तो ये गुड़ खाएंगे तो वो गला ठीक रहेगा, वरना खराब हो जाएगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह बरकत दे आपको, शुक्रिया।
अल्लाह ताला सब्र व शुक्र के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने वालों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और हमें भी आफियत व सलामती अता फरमाए। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लकल हम्दु या अल्लाह, ऐ मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है।
जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। जैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, बस बाक हर दिन नए लाए जिंदगी। यार अब जगा भी रहे हो करम ये, यार अब जगा जिंदगी।